नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 8 नवंबर 2019 के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, दक्षिण एशिया के देशों में वायु प्रदूषण का स्तर स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बना, यूनिसेफ ने तत्काल कार्रवाई की पुकार लगाई। बढ़ते नस्लवाद और यहूदीवाद विरोध पर यूएन महासचिव का संदेश, असहिष्णुता और नफरत से प्रेरित सोच से छुटकारा पाना संभव। व्यापारिक मुद्दों पर अमेरिका और चीन में तनातनी से विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिरता के सामने संकट। एक विशेष बातचीत नोबेल पुरस्कार सह विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी से, और सेनेगल मूल की महिला अधिकारी सिनबियो डियोफ को संयुक्त राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मान। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। साथ ही अपने एंड्रॉयड या आईफोन में यूएन न्यूज ऐप के लिए सर्च कीजिए यूएन न्यूज रीडर, जिसे डाउनलोड करने के बाद आपको भाषाओं की सूची में हिंदी भी नजर आएगी। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिएटा फोर ने भारत और दक्षिण एशिया के अन्य देशों में वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि वायु गुणवत्ता संकट के स्तर पर पहुंच गई है और क्षेत्र में 62 करोड़ से ज्यादा बच्चे प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। इस संकट से तत्काल निपटने के लिए उन्होंने असरदार कार्रवाई की एक अपील जारी की है। भारत की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण इस सप्ताह खतरनाक स्तर पर पहुंच गया और कुछ इलाकों में प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय की गई सीमा से 40 गुना ज्यादा देखा गया। दिल्ली से अंशु शर्मा की रिपोर्ट।
उत्तरी भारत में दिल्ली और आसपास के राज्यों में बड़े पैमाने पर घातक धुंध छाई हुई है। पिछले कुछ दिनों में नई दिल्ली के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स या AQI 800 का आंकड़ा पार कर गया, जबकि 300 से ऊपर के स्तर को खतरनाक माना जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले 10 शहरों में से एक है। पिछले कुछ वर्षों से अक्टूबर नवंबर के आसपास उत्तरी भारत की हवा में घातक बदलाव नजर आ रहा है। भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में जलवायु विशेषज्ञ प्रीति सोनी ने इस मौसम में वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ने के कारणों का उल्लेख किया।
एक तो स्टेबल बर्निंग, जो एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज और एग्रीकल्चरल क्रॉप को बर्न करने के कारण होते हैं, और उसके साथ साथ वेस्ट को बर्न करना, क्रैकर्स को बर्न करना, और काफ़ी और भी हैं, जैसे गाड़ियों से उड़ता धुआं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये सारे मिलके और विंटर में एक ऐसा माहौल भी बन जाता है ताकि इतनी सारी हवा और का डायरेक्शन भी इम्पैक्ट करता है, और इसके ऊपर से जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज वो भी एक कारण बन गया है आजकल।
भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में जलवायु विशेषज्ञ प्रीति सोनी के शब्द, खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों पर इसके तात्कालिक प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण विभाग के मंजीत सिंह सलूजा ने बताया,
प्रमुख बीमारियां जैसे कि स्ट्रोक, लंग कैंसर तथा हृदयघात, हार्ट डिजीजेस प्रमुख हैं। वायु प्रदूषण गर्भवती महिलाओं में समय से पहले जन्म तथा पैदा हुए बच्चों के वजन को कम करने जैसे प्रभाव भी डालता है। ये बच्चों में दिमागी विकास तथा लंग फंक्शन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
ये थे विश्व स्वास्थ्य संगठन के मंजीत सिंह सलूजा के शब्द। हालांकि भारत की मौजूदा सरकार ने प्रदूषण स्तर को अगले 5 वर्षों में 35% तक कम करने का संकल्प लिया है। भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के वैलेंटीन फॉल्टेस्क्यू ने बताया कि इस समस्या से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियां भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हैं।
First of all, UNEP has decided to work with those sectors which
सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने उन सभी सेक्टरों के साथ काम करने का निश्चय किया है जो दिल्ली और उसके आसपास प्रदूषण रोकने के लिए जरूरी होंगे। हम कृषि सेक्टर के साथ काम करके खुले में पराली जलाने की प्रथा को खत्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं। खेती में ज्यादा टिकाऊ तरीके अपनाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें प्रकृति को उजाड़ने नहीं बल्कि संवारने के उपाय हों। पराली न जलाने और टिकाऊ तरीके अपनाने के लिए जमीन पर कई प्रोजेक्टों में हम सरकार का साथ दे रहे हैं, जो बहुत सफल भी हो रहे हैं।
भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के वायु प्रदूषण विशेषज्ञ वैलेंटीन फॉल्टेस्क्यू के शब्द।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति का जन्म घृणा करने के लिए नहीं हुआ है, इसलिए असहिष्णुता की रोकथाम की जा सकती है और नफरत से प्रेरित सोच का अंत भी। यूएन प्रमुख ने बढ़ते नस्लवाद, यहूदीवाद विरोध और नफरत के अन्य स्वरूपों के विरुद्ध अपनी मुहिम को जारी रखते हुए ये बात कही है। ज्यादा जानकारी के साथ यूएन हिंदी सेवा के प्रमुख महबूब खान।
यूएन महासचिव ने न्यूयॉर्क में यहूदी विरासत के संग्रहालय में गुरुवार को एक समारोह को संबोधित किया, जिसे जर्मनी में नाज़ी शासन काल में क्रिस्टेनलॉस्ट द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास की स्मृति में आयोजित किया गया था। 81 वर्ष पहले 9-10 नवंबर 1938 की रात में कई यहूदी घर, व्यवसाय और उपासना स्थल तबाह कर दिए गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के लिए ये स्मृति समारोह न सिर्फ पीछे मुड़कर देखने का एक अवसर था, बल्कि सतर्क बने रहने की जरूरत को पहचानने का मौका भी। विश्व भर में यहूदियों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं का उल्लेख करते हुए महासचिव ने कहा कि हॉलोकॉस्ट के कई दशक बाद भी दुनिया की सबसे पुरानी नफरत आज भी हमारे साथ है। हाल के समय में यहूदी कब्रगाहों और हॉलोकॉस्ट स्मारक को नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा पिट्सबर्ग में पिछले साल एक यहूदी उपासना स्थल पर गोलीबारी की घटना हुई, जिसे अमेरिका के इतिहास में सबसे भीषण यहूदी विरोधी हमला माना गया। यूएन प्रमुख ने आगाह किया कि नफरत के अन्य स्वरूप भी उभर रहे हैं और चर्च में बमबारी, मस्जिदों में गोलीबारी और शरणार्थियों व प्रवासियों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं हुई हैं। उन्होंने सचेत किया कि नफरत से लोगों के बीच रिश्ते और समाज की नींव कमजोर पड़ती है। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए अभिभावकों, शिक्षकों और राजनीतिक नेताओं से तत्काल कार्रवाई की पुकार लगाई।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में हथियारबंद संगठन के एक प्रमुख नेता बॉस्को टगांडा को सामूहिक हत्याओं, बलात्कार और अन्य अत्याचारों के मामलों में दोषी घोषित करते हुए 30 वर्ष जेल की सजा सुनाई है। नीदरलैंड्स के हेग शहर में स्थित अपराध न्यायालय ने युद्धापराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों के मामलों में पहली बार किसी अपराधी को इतनी लंबी सजा का ऐलान किया है। बॉस्को टगांडा को द टर्मिनेटर के नाम से भी जाना जाता था और उन पर युद्धापराध और मानवता के विरुद्ध अपराध के मामलों में बिना किसी संदेह के आरोप साबित हुए हैं। ये घटनाएं वर्ष 2002 और 2003 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के इतुरी प्रांत के गाँवों में हुई थी। बॉस्को टगांडा पर FPLC मिलिशिया गुट के उप प्रमुख और सैन्य अभियानों के कमांडर के तौर पर हत्या, बलात्कार, यौन दास्ता और लिंडू समुदाय को जबरन विस्थापन के लिए मजबूर करने का आरोप था। इसके अलावा उन पर 15 साल से कम उम्र के बच्चों की सैनिकों के रूप में भर्ती करने के लिए भी दोषी पाया गया है। इन बाल सैनिकों का इस्तेमाल रवांडा और युगांडा के सीमावर्ती इलाकों में लड़ाई के दौरान किया गया। टगांडा पर इनमें से कुछ बाल सैनिकों के साथ बलात्कार और उनका उत्पीड़न करने और उन्हें यौन दास्ता का शिकार बनाने का आरोप भी साबित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि चीन और अमेरिका के बीच व्यापार शुल्क को लेकर चल रही लड़ाई में किसी भी पक्ष की जीत नहीं होने वाली, बल्कि पूरी दुनिया को इसके परिणाम झेलने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच अगर जल्द ही कोई समझौता नहीं हुआ तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ने की आशंका है। वर्ष 2019 के पहले 6 महीनों के आंकड़ों के अनुसार चीन पर उच्च अमरीकी आयात शुल्क का अधिकांश खमियाजा अमरीकी उपभोक्ताओं और फर्मों को तो झेलना पड़ा ही है, चीन को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। शिवानी काला की रिपोर्ट।
2018 के मध्य में अमेरिका द्वारा उठाए गए कदमों से एशियाई दिग्गज चीन के लिए चुनौती पैदा हुई है और उस पर $35 अरब की मार पड़ी है। इस दौरान चीन की फर्मों ने लक्षित उत्पादों के निर्यात में औसतन 1/4 की गिरावट दर्ज की है। लेकिन ताइवान को इस सुस्ती का लाभ पहुंचा है और वर्ष 2019 की पहली छमाही में निर्यात में 4.2 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यूएन एजेंसी के मुताबिक इन कदमों से कुछ अन्य देशों को भी फायदा हुआ है, जिनमें मेक्सिको 3.5 अरब डॉलर, यूरोपीय संघ 2.7 अरब डॉलर और वियतनाम 2.6 अरब डॉलर शामिल है। वहीं कोरिया, कनाडा और भारत को भी इससे 90 करोड़ डॉलर से 1.5 अरब डॉलर तक का लाभ मिला है। अमेरिकी बाजार को चीन के निर्यात में लगभग 35 अरब डॉलर का जो घाटा हुआ है, उसमें से लगभग 21 अरब डॉलर का लाभ इन देशों को मिला है, जबकि शेष 14 अरब डॉलर या तो अमेरिकी उत्पादकों को मिला या फिर बीच में हो गया। सबसे ज्यादा मार चीन के विनिर्माण क्षेत्र पर पड़ी है, विशेषकर कंप्यूटर, ऑफिस मशीनरी और संचार उपकरण के क्षेत्र में। यहां चीन से निर्यात में 15 अरब डॉलर की गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार रसायन, फर्नीचर, सटीक उपकरण और विद्युत मशीनरी जैसे दूसरे क्षेत्रों में भी काफी हद तक गिरावट आई है। इसके बावजूद इस रिपोर्ट में चीनी कंपनियों की मजबूती को रेखांकित करते हुए कहा गया है कि अमेरिका के अत्यधिक निर्यात शुल्क के बावजूद चीनी फर्मों ने 75% निर्यात बनाए रखा है। यूएन एजेंसी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि अध्ययन के परिणाम से एक वैश्विक चेतावनी मिलती है। एक ऐसे व्यापार युद्ध जिसमें सभी पक्षों की हार तय हो, से न केवल मुख्य दावेदारों को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और भविष्य में विकास की स्थिरता को मुश्किल खड़ी हो रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका और चीन के बीच एक संभावित व्यापार समझौता व्यापारिक तनाव को कम करने में मदद करेगा।
वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 विद्वानों को दिया गया है, जिनके नाम हैं एस्थर डफलो, अभिजीत बैनर्जी और माइकल क्रेमर। इन तीनों अर्थशास्त्रियों ने गरीबी दूर करने के लिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित अनेक देशों में ऐसे प्रयोग किए हैं जिनके तहत गरीब लोगों को कुछ संपदा व कारोबार शुरू करने का कुछ प्रशिक्षण देकर हालात सुधारने का मौका दिया जाता है। यूएन हिंदी न्यूज के प्रमुख महबूब खान ने सहविजेता प्रोफेसर अभिजीत बैनर्जी से फोन पर बात की और पहला सवाल यही पूछा कि उनका काम या रिसर्च क्या है जिसके आधार पर उन्हें ये पुरस्कार मिला है।
ऐसा होता है कि अगर कोई प्रश्न है कि आपको इस तरह का कोई सेहत के लिए कुछ करना है या ऐसे कोई इंटरवेंशन है, तो कैसे पता चलता है कि वो कामयाब है या नहीं, तो उसमें हम लोग लार्ज स्केल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करते हैं। इसमें ये लॉटरी के तरह से तय करते हैं कि कहाँ ये करेंगे या कहाँ ये नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इससे कोई फर्क पड़ता या नहीं, जो आशा था वो हुआ या नहीं, उससे अच्छा हुआ, उससे बुरा हुआ, कुछ और हुआ। तो इसी तरह के काम हम लोग कई कर चुके हैं। हमारे एक संस्था है, उसके नाम है अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब जेपैल। उसके तरफ से हम लोग और हमारे जितने साथी हैं एक साथ काम करते हैं, हम लोगों ने शायद लगभग 1000 रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल अभी तक कर चुके हैं और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसको हम लोग पॉलिसी जो सरकार और जो संस्थान है वही इंफॉर्मेशन लेके काम करते हैं। इसलिए हम लोग उस लोगों के साथ काम करते हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन, ये जो नॉलेज है, जो ये काम करता है, ये नहीं काम करता है, ये इस तरह से काम करता है, ये इस तरह का इंफॉर्मेशन देते हैं।
जी, तो मुख्य तौर पे आप ये बता रहे हैं कि जो गरीबी दूर करने का जो मिशन है या जो चैलेंज है, चुनौती है, उसमें आपने अच्छा खासा काम किया है। तो ये बताएं कि भारत में कोई इंसिडेंट ऐसा बताएं जहां आपने ये एक्सपेरिमेंट किया और वहां पर गरीबी दूर करने में कामयाबी मिली, और जाहिर सी बात है कोई सफल रहा है तो और देशों में भी लागू किया जा रहा होगा।
एक हम लोग पश्चिम बंगाल में किया था, वो बांग्लादेश में भी उसके एक ही तरह के एक्सपेरिमेंट किसी और ने किया, हमारे साथी है उन्हें की, और पाकिस्तान में भी किया। गरीबी के दो तरह के थ्योरी होते हैं, एक होता है कि ये लोग अपने आप कामयाब नहीं है, और दूसरा होता है कि ये कामयाब है लेकिन इसको मौका नहीं मिलता। तो हम लोगों ने एक जो सबसे गहरी गरीबी जहाँ है उस तरह के लोगों के लिए साथ ये किया था, जैसे कि मैंने पहले बताया रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, रैंडमली जिसको चुना गया है उसको हम लोग ने एक संस्था के साथ जोड़ के शेष संस्था ने उसको कुछ एसेट दिया। एसेट के मतलब होता है कि शायद उनको अगर गाय चाहिए तो गाय दिया, भैंस चाहिए तो भैंस दिया, और अगर कोई और छोटा मोटा बिजनेस के लिए जो कैपिटल होता है वो दे दिया, उसको गिफ्ट दिया, उस गिफ्ट के साथ थोड़ा सा कोचिंग भी दिया कि ये इस तरह से करो तो ये ठीक से होगा और इससे आपको फल आएगा। और उसके बाद हम लोग जिनको दिया गया उसको पहले 2 साल बाद, उसके बाद 3 साल बाद, उसके बाद 7 साल बाद, और अभी 10 साल बाद उसको देखते हैं कि इसमें क्या फर्क हुआ। जिनको ये मिला वो जिनको नहीं मिला उसे काफी ज्यादा अच्छे इकोनॉमिक तौर पे है, और उसके कारण है पहले तो उसको एक एसेट मिला तो वो उसके उसको एसेट से कुछ एक्स्ट्रा कुछ कमाई हुआ, लेकिन उसके बाद वो कमाई को लेके ये लोग और सारे चीज किया, नए 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 छोटा सा बिजनेस किया, इसके वजह से उसको करीब 25-30% ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है अभी भी 10 साल बाद। ये लोग कामयाब थे, सक्षम थे, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता था, मौका दे दिया तो वो लोग मौका ले लिया और उससे उसको फायदा है।
तो आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसे लोग थे जो कुछ करना चाहते थे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, और उनको कुछ एसेट या ऐसा कैपिटल सपोर्ट नहीं मिल रहा था और जो आपने प्रोवाइड कराया। तो इसमें ये बात और बताएं कि क्या कैश रकम देने से लोगों में ज़्यादा ये सक्सेस रेट है या सिर्फ एसेट देने में कि किसी तरह का बिजनेस टूल जैसा आपने जिक्र किया?
ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम लोग यही एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने करीब मेरे ख्याल से 7 देशों में किया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, गाना, पेरू एंड होंडुरस, 7ों में एसेट दिया, अलग अलग एसेट था, जहाँ की कुछ देशों में वो एसेट मुर्गी थे, कुछ देशों में वो खास तौर से गाय थे, कैश कहीं नहीं दिया गया।
क्या आपने जिक्र किया बहुत सारे देशों में आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो क्या कहीं जो इन देशों की सरकारें हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रही हैं या उनमें कोई इंटेंशन या मंशा नहीं है कि जो गरीब लोग हैं उनको इस तरह से मदद करके और बड़े पैमाने पर चलाएं ताकि गरीबी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए?
देखिए कुछ कुछ ऐसा हो रहा है, इंडिया में झारखंड के स्टेट ये कर रहे हैं, बिहार में भी करने का कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ कुछ स्टेट्स करते हैं। ऐसी नहीं है कि लोग बोलते हैं कि यार नहीं ये नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक इन्वेस्टमेंट है वो करना है, तो जितना करना है तो वो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हो रहा है थोड़ा सा। बिहार ने अनाउंस किया कि 1 लाख फैमिलीज को ये प्रोग्राम में वो लोग लाएंगे।
प्रोफेसर अभिजीत बैनर्जी के साथ इस इंटरव्यू का बड़ा रूप आप हमारी वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं, पता है news.un.org/hi। शांति रक्षा की जिम्मेदारी निभाने की बुनियाद में निहित होता है मिलजुल कर काम करने का असीम जज्बा, ये कहना है संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा अभियानों के प्रमुख जियोपिया लॉकवा का, जिन्होंने मंगलवार को यूएन सर्वश्रेष्ठ महिला पुलिस अधिकारी का सम्मान सेनेगल मूल की महिला पुलिस अधिकारी मेजर सिनाबियो डियोफ को दिया। मेजर सिनाबियो डियोफ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने नाजुक और कमजोर लोगों की आवाज बनने के लिए असाधारण साहस दिखाया है और महिला पुलिस अधिकारियों का नेटवर्क बनाकर उन्हें आपस में जोड़ने में भी सराहनीय काम किया है। पूरी जानकारी के साथ शिवानी काला।
मेजर सिनाबियो डियोफ उन 1400 महिला पुलिस अधिकारियों में से एक हैं जो इस समय दुनिया भर में अनेक अभियानों में संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले काम कर रही हैं। ये महिला पुलिस अधिकारी अनेक तरह की भूमिकाओं में काम कर रही हैं, जिनमें क्षमताएं बढ़ाने और उन्हें बेहतर बनाने से लेकर सामुदायिक प्रयासों पर आधारित पुलिसिंग, आम लोगों की सुरक्षा, यौन हिंसा व लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम जैसे काम शामिल हैं। मेजर सिनाबियो डियोफ ने इस मौके पर कहा,
Nothing motivates one more than recognition for hard work.
मेहनत के लिए पहचान मिलने से ज्यादा कोई भी बात प्रोत्साहन नहीं दे सकती। मैं और ज्यादा करने के लिए प्रोत्साहित महसूस करती हूँ और वादा करती हूँ कि महिला अधिकारों को बढ़ावा देने, यौन व लिंग आधारित हिंसा के विरोध में आवाज उठाने के साथ साथ हाशिए एककरण और उन भेदभाव पूर्ण परंपराओं व धार्मिक प्रथाओं से लड़ाई जारी रखूंगी जिनका शिकार महिलाएं व लड़कियां होती हैं।
पुलिस अधिकारी मेजर सिनाबियो डियोफ के शब्द, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ महिला पुलिस अधिकारी सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।